ब्रिस्ट और हबीब, दूर या करीब। 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण नाटककारों, निर्देशकों और रंगचिंतकों में बर्तोल्ट ब्रिस्ट संभवतः सबसे अधिक चर्चित और प्रशंसित रहे हैं, खासतौर से इसलिए कि पाश्चात्य रंगमंच की बुनियाद समझे जाने वाले अरस्तु के नाट्य सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा झटका पहले कभी नहीं लगा था। आंतो आर्तो, मेयरहोल्ड, ग्रोटोवस्की, पीटर ब्रुक, रिचर्ड शिखनर आदि अनेक रंगचिंतकों ने भी इस दिशा में कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, लेकिन ब्रिस्ट की मानवीय संवेदना या राजनीतिक दृष्टि ने विश्व स्तर पर कला विमर्श को जो एक सर्वथा नई और प्रभावकारी दिशा दी वह अन्यतम थी। विश्व के अनेक रंग समीक्षकों ने हबीब तनवीर के रंगकर्म को ब्रिस्ट के घराने का ही प्रतिपादित किया है। कुछ रंग समीक्षकों ने उन्हें भारतीय पारंपरिक रंगमंच और ब्रिस्ट के बीच की कड़ी के रूप में देखा है। एडिनबरा फेस्टिवल में चरणदास चोर की प्रस्तुति के बारे में एक समीक्षक ने यह भी कहा, लोक नृत्य और गीतों से सजे इस नाटक में संस्कृत परंपरा और ब्रिस्ट का अद्भुत समन्वय है। स्वयं हबीब तनवीर ने भी कभी इस नजरिए का खंडन मंडन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने अनेक लेखों, भेंटवार्ताओं और भाषणों में ब्रिस्ट के रंगकर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे गुरुतुल्य मान्यता दी है। ब्रिस्ट जैसे महत्वपूर्ण रंग व्यक्तित्व को दुनिया भर के अनेक शीर्षस्थ निर्देशकों, नाटककारों और समीक्षकों ने उन्मुक्त मन से सराहा है। उनकी राह से अलग हटकर नई राह अन्वेषित करने वाले रंगकर्मियों ने भी उनकी प्रशंसा की है। इसलिए यदि हबीब तनवीर भी ब्रिस्ट के विचारों, अवधारणाओं और मान्यताओं की प्रशंसा करते हैं तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हबीब तनवीर ब्रिस्ट के प्रशंसक मात्र है या उनके सिद्धांतों के अनुकर्ता या अनुगामी भी। क्या हबीब तनवीर का रंगकर्म, विचार और मान्यताएं ब्रिस्ट के सिद्धांतों का अनुकरण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी राह के अन्वेषण के दौरान हबीब तनवीर को ब्रिस्ट के सिद्धांतों और मान्यताओं में बहुत कुछ ऐसा नजर आया हो जो उनके विचारों के समानांतर रहा हो? क्या इसका विवेचन करना आवश्यक नहीं कि हबीब तनवीर का रंगकर्म ब्रिस्ट के कितना निकट है और कहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें ब्रिस्ट की प्रस्तुतिकरण शैली से अलग भी करता है? क्या उनके नाटकों की प्रस्तुतियों का स्वाद ब्रिस्ट के नाटक और उनकी प्रस्तुतियों से दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव से कुछ अलग हटकर है? क्या हबीब तनवीर के नाटकों का प्रभाव किसी भी रूप में एक सर्वथा नया अनुभव देने वाला है? इन प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए हमें जरा घरे जाकर विश्लेषण करना होगा। सच तो यह है कि ब्रिस्ट और हबीब दोनों के व्यक्तित्व में कुछ जबरदस्त समानता है। दोनों ही दिल से शायर और दिमाग से कट्टर मानवतावादी हैं। दोनों की मानवतावादी दृष्टि से समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व है जो केवल सर्वहारा ही नहीं बल्कि उपेक्षित और त्याज भी है। दोनों ही अत्यंत साधारण से नजर आने वाले चरित्रों के असाधारण पर अपनी विषयवस्तु का सृजन करते हैं। ब्रिस्ट और हबीब दोनों ने ही रंगमंच की स्थापित और स्वीकृत मान्यताओं का खंडन करके दर्शकों को एक नए आस्वाद से परिचित कराया है। इस नए आस्वाद की तलाश में दोनों ने अपने अपने तरीके से मशक्कत की है। दोनों ने ही अपने अपने देश और समाज में जबरदस्त राजनीतिक हलचले देखी और शोषित तथा सर्वहारा के दर्द की आवाज बने। दोनों के लेखन और चिंतन में संघर्ष के स्वर रंगमंच पर अभिव्यक्त होने से पूर्व ही उनके सृजन कर्म में मुखरित होने लगे थे। लेकिन इन अनेक समानताओं के बावजूद इनकी राहें एकदम अलग अलग रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हबीब तनवीर का रंगमंच से नाता भी नहीं जुड़ा था तब तक बर्तोल्ट ब्रिस्ट रंगमंच की दुनिया में पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। ब्रिस्ट हबीब तनवीर की उम्र से 25 वर्ष बड़े थे। सन 1948 जब हबीब तनवीर केवल 15 वर्ष के थे तब बर्तोल्ट ब्रिस्ट अपने नाट्य सिद्धांतों की प्रसिद्ध पुस्तक क्लीनेस आर्गनून फॉर द दॉस थिएटर यानी अ शॉर्ट आर्गनम फॉर द थिएटर लिखी थी और उस पुस्तक ने प्रकाशन के साथ विश्व रंगमंच में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी थी। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि अपनी युवावस्था में जब हबीब तनवीर इप्टा के बैनर में बल्लाश रानी, दीना पाठक और मोहन सहगल जैसे सुविज्ञ लोगों के साथ नाटक कर रहे थे तब तक मोटे तौर पर उनका परिचय कुछ प्रमुख पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों से हो चुका था। एक अत्यंत दिलचस्प प्रसंग में हबीब तनवीर ने स्तानिलावस्की के नाट्य सूत्र इमोशन मेमोरी को तर्ज पर बल्लाश रानी द्वारा मसल मेमोरी का पाठ पढ़ाए जाने का जिक्र किया है। किसी सामान्य से निर्देशक के लिए यह बहुत आसान और सरल तरीका होता है कि अपने हम ख्यालात से नाट्य सूत्रों और सिद्धांतों को लीक कर चल रही उन्हीं का पृष्ठ पेषण करता, लेकिन हबीब तनवीर ने यह रास्ता नहीं अपनाया। यह तो ठीक है कि अपने रंग जीवन के आरंभिक दिनों में ब्रिस्ट और उनके नाट्य सिद्धांतों से पूरी तरह परिचित नहीं थे, लेकिन उनके आरंभिक रंगकर्म में एक खास रुझान जरूर नजर आता है। सन 1948 में मुंबई की एक मिल के बाहर मजदूरों के बीच उन्होंने अपना लिखा हुआ नुक्कड़ नाटक शांतिदूत कामगार प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी का रूपांतर किया शतरंज के मोहरे के नाम से। यह उनके द्वारा रूपांतरित और निर्देशित पहला रंगमंचीय नाटक था जिसमें उन्होंने सूत्रधार की भूमिका भी निभाई। इसके बाद सन 1952 में रूसी नाटक द फेमिनाइज टच का रूपांतर जालीदार पर्दे के रूप में किया, लेकिन यह उनके अंतर्मन के प्रशिक्षण का दौर कहा जा सकता है जिससे गुजरने पर उनके मन में एक निजी मोहरे की तलाश की भूख जागी। तब तक हबीब साहब इप्टा के संयोजक बन चुके थे। सरदार जाफरी, प्रहलाद साहनी, दीना गांधी वगैरह पार्टी के बड़े नेता नाटकों के जरिए अशांति फैलाने के जुर्म में जेल में डाल दिए गए थे। इसीलिए हबीब साहब पर इप्टा के नाटक चुनने, लिखने और निर्देशित करने का भार अनायास आ पड़ा। इप्टा कम्युनिस्ट पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ था। स्वतंत्र रूप से रंगमंच और नाटकों के संबंध में इप्टा की कोई स्पष्ट रीति नीति नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद इप्टा में एक संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई। यद्यपि हबीब तनवीर पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे, फिर भी वे कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के कट्टर समर्थक थे। कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, सरदार अली जाफरी, शैलेंद्र, मोहन सहगल, प्रहलाद साहनी और दीना गांधी जैसे लोगों ने नाटकों के बजाय फिल्मों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम चुना। लेकिन हबीब तनवीर बम्बई छोड़कर दिल्ली चले गए। इस संबंध में उन्होंने लिखा, मुझे जो भी कुछ कहना था सौंदर्य शास्त्र में, प्रदर्शनकारी कलाओं में और साथ ही सामाजिक रूप से राजनीतिक नजरिए से उसका माध्यम से निभा नहीं था, थिएटर था। ये एक बहुत साफ बोध था मन में पांचवें दशक के आरंभिक दिनों में जो मुझे दिल्ली ले आया। यहाँ हमें अभी तनवीर और बल्तरोड ब्रेस्ट में एक और समानता नजर आती है। सतही तौर पर लगभग 30 वर्षों तक ब्रेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टर समर्थक तो थे, लेकिन वे कभी भी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। सन 1947 में अपने विरुद्ध एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, यह मेरे लिए सबसे अच्छा था कि मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य न बनूं। मेरा ख्याल है कि वे अर्थात जर्मन कम्युनिस्ट मुझे मात्र एक ऐसे लेखक के तौर पर मान्यता देते जो सच लिखना चाहते हों जैसा कि उसने देखा, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति की तरह नहीं। मैंने पाया कि यह मेरा काम नहीं है। इस समानता का दूसरा पक्ष भी कम दिलचस्प नहीं। ब्रेस्ट और हबीब भले ही कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति सक्रिय सदस्य रहे हों, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनके सिद्धांत और विचारों पूरी तरह जुड़े रहे। यह कहना शायद अत्युक्ति न होगी कि दोनों के रंगकर्म को सामाजिक दिशा देने वाले प्रमुख तत्व के रूप में मार्क्सवादी विचारधारा ही केंद्र में रही है, लेकिन दोनों ही मार्क्सवादी विचारधारा के अभिव्यक्ति उपदेशात्मक या प्रचारात्मक नहीं थे। यह सच है कि उपदेश और विचार के अभिव्यक्ति के तत्व दोनों के ही नाटकों में प्रमुख रूप से उभरे हैं और उन्होंने इनके अभिव्यक्ति को नई खुशबू और नया रूप भी दिया है, लेकिन इन दोनों की अभिव्यक्ति में कलात्मकता का पहलू इतना प्रमुख है जो उन्हें एक नई जमीन पर खड़ा करता है। इन दोनों के लिखे नाटकों और उन नाटकों के गीतों में तो यह बात झलकती ही है, लेकिन उनकी शायरी में यह कलात्मकता विशेष रूप से नजर आती है। इसीलिए हबीब और ब्रेस्ट दोनों ही नाटककार, निर्देशक और रंगचिंतक हुए होते हुए भी अपनी शायरी का सिक्का खूब जमाते हैं। एक उदाहरण, ब्रेस्ट की एक कविता अपने उत्तराधिकारियों से का एक अंश। यह कैसा समय है जबकि पीड़ों की बात करना लगभग गुनाह है, क्योंकि वह अपने विभीषिकाओं के प्रति खामोशी को ध्वनित करता है। वहां वह आदमी जो चुपचाप एक गली पार करता है, शायद अपने दोस्तों की पहुंच से बाहर है जो जरूरतमंद है। यह एकदम सच है कि मैं अब भी अपनी रोजी कमाता हूँ, यह यकीन करो मेरा कि ये महज एक दुर्घटना है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह मुझे भर पेट खाने का हक देता है, लेकिन दुर्घटनावश मुझे छोड़ दिया गया है। अगर मेरा भाग्य अच्छा नहीं तो मैं खलास। वे कहते हैं मुझसे खाओ और पियो, शुक्रगुजार हो जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए, लेकिन मैं कैसे खा और पी सकता हूँ अगर मैं एक भूखे आदमी की रोटी छीन रहा हूँ और मेरे गिलास के पानी के लिए कोई प्यास से तरस रहा है। फिर भी मैं खाता हूँ, पीता हूँ। ब्रेस्ट की इस कविता के में विचारात्मक आत्मलोचन है। अत्यंत कठिन समय में समझौता न करने की इच्छा के बावजूद समझौता कर लेने की व्यवस्था, यहाँ ब्रेस्ट स्वयं के माध्यम से अपने आसपास के उस समाज को संबोधित करते हैं जो सब कुछ देख कर भी परिस्थितियों के परिवर्तन के लिए सचेष्ट नहीं और तटस्थ बना बैठा है। समाज में तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी इसी तटस्थता की झलक में हमें हबीब तनवीर की शायरी में मिलती है। उनकी नज्म معراج تہذیب کے کچھ انش۔ جمہوریت کے درباروں میں سفید پوش انسان کتنی شیرینی سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی دین ہے کہ ان درباروں میں جو بھی آتا ہے پہلے مروضہ انداز میں سلام کرتا ہے، پھر نشست اور گفتگو میں ایسا سلیق برتتا ہے جو مروضہ ہے، اسی لیے دلکشی بھی ہے اور مقبول عام بھی۔ لوگ موسم کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مزاج پوچھتے ہیں، عام سیاست پر تب آزمائی کرتے ہیں۔ میر و غالب کا کوئی شعر یاد آ جائے تو اس سے موضوع کو نکھارتے ہیں اور اس کے بعد نہایت شائستگی سے مدعی دل بیان کرتے ہیں۔ لہجے میں غیر مناسب شدت نہیں ہوتی، آنکھوں میں لالچ کی آنچ نہیں ہوتی، سننے والا خدا پریشانی سے سنتا ہے، پیشانی سے سنتا ہے، کسی کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا۔ آج ایسے ہی ایک دربار میں ایک شخص آیا، ایک عجیب شخص، نہ سلام نہ دعا نہ مزاج پرسی، بس بل بلا کر کہہ اٹھا میں بھوکا ہوں۔ نہ اس کی آواز میں تہذیب تھی، نہ الفاظ میں اخلاق، لفظ پتھر کی طرح محفل پہ برس پڑے، آنکھوں میں لاوا اول آیا، تیوری سے مانو غبار بلند ہو گیا۔ صاحب خانہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لی، جیسے مہذب آدمی کسی حسینہ پہ نظر اٹھاتے ہی اگر اس کے پاؤں میں لنگ دیکھتے ہیں تو فوراً نگاہیں ہٹا لیتے ہیں۔ محفل کے سب لوگ زبان حال سے کہہ رہے تھے کس قدر شائستہ آدمی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میری خاموشی میں ایک داستان تھی، نہ جانے وہ میرا خاموش اندازہ تخاطب کیسے بھانپ گیا۔ بھانپ گیا ہوگا تبھی تو کہہ اٹھا، صاف الفاظ میں با آواز بلند کہہ اٹھا، میں جانتا ہوں جھوٹ نہ بول کر رہی میں بھوکا ہوں۔ سچ کی پاداش میں آدمی دار پہ کھینچ دیا جاتا ہے، مجھے زہر کا پیالہ قطرہ قطرہ دیا جا رہا ہے، میں گلوئے خشک میں رسن کی جرح آہستہ آہستہ تنگ کی جا رہی ہے۔ تہذیب کے معراج یہی ہے کہ سقراط و منصور و مسیحا جمہوریت کے صحراؤں میں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو کر بھی جبو و خوار ہیں اور جبو و خوار نظر آئیں گے، اور کچھ اس طرح کے زندہ رہ کر بھی گمنام و بے مایا رہے اور مر کر بھی۔ برشٹ اور حبیب دونوں کی ان کویتاؤں کا کیندریہ وشے بھوک اور بھوکا آدمی ہے، شوشت اور سروہارا۔ برشٹ کا بھوکا آدمی دو وشودیوں کے وشکا اور جلنے کے بعد ہتاش اور کنٹت ہے، جبکہ حبیب کا بھوکا آدمی آزادی ملنے کے بعد کے سپنوں کے ٹوٹنے بکھرنے سے چھپتے ہیں، آکروش سے بھرا۔ دونوں کی کویتاؤں کا مول سور ویگ ہے، لیکن بھنگما ایک دم الگ الگ ہے۔ برشٹ کا ویگ ترک کے ہتھیار سے بدھی اور وویک پر بھرپور پرہار کرتا ہے، لیکن حبیب کی کویتا کا ویگ دماغ سے زیادہ دل کو چھوتا ہے۔ اس کے آکروشی سور من پران میں ایک وشٹ اتجنا بھرتے ہیں، اس کے تیور تیکھی اور آکرامک ہیں۔ دونوں کی کویتائیں ویوستھا ورودھی ہیں، لیکن ایک کا سور سنیت اور دورگامی ہے، دوسرے کا تاتکالک اور جوکھم جھیلنے کو تیار۔ برشٹ کی سنیت اور وویکشیل مدراؤں اور حبیب کی آکرامک اور جھجھارو تیوروں کی پشٹبھومی بھی کم مہتوپورن نہیں، اس کے پیچھے ان دونوں کے گہرے رنگانوبھو ہیں۔ برشٹ نے یہ کویتا سن 1949 کے آس پاس لکھی، جو ان کے دوسرے کویتا سنگرہ میں سنکلت ہے۔ تب تک برشٹ اپنے ایپک تھیٹر کے انیک مہتوپورن سوتر دے چکے تھے۔ یہ ایفیکٹ یعنی الینیشن ایفیکٹ یا الگاؤ کے سدھانت پر انتراشٹری استر پر چرچا شروع ہو چکی تھی، ساتھ ہی شارٹ آرگنم کا وشو کی انیک بھاشاؤں میں انواد ہو چکا تھا۔ تب تک برشٹ استانیولاوسکی کی میتھڈ ایکٹنگ کی پدھتی، اس کے پریوجن تھا درشکوں پر پڑنے والے پربھاؤ کے ورودھ ایک نئی ناٹک پدھتی کے انویشن کے روپ میں پرتشٹھت ہو چکے تھے۔ وہ ایسا سمے تھا جب برشٹ اپنے سیجن کا سفل پراپت کر رہے تھے اور گرما منڈت ہو رہے چکے تھے۔ اس سمے ان کی کویتا میں سوسنگت اور وویک جن وچاروں کی گندھ سوابھاوک بھی تھی اور اپیچھت بھی۔ دوسری اور حبیب تنویر یہ نجم انہوں نے 1964 میں لکھی، تب یہ اپنی پہچان بنانے کے لیے سنگھرشرت تھے اور نجی محاورے کی کھوج میں سنلگن تھے۔ 1954 میں آگرہ بازار کی وسطی کے دوارا وے انیک کلا پریمی اور بھارتی سنسکرتی کے سمرتھکوں کا دھیان اپنی اور آکرشت کرنے میں سفل ہو گئے تھے، لیکن ساتھ ہی پاشچات رنگ منچی اوھارناؤں کی بودھک جکڑ میں کسی پھنسے ادھکانش رنگ سمیچکوں نے آگرہ بازار کو ناٹک ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हबीब को ये लोग हाशिए पर भी नहीं डाल सकते थे, उनकी व्यवस्था थी। आगरा बाजार की शुरुआती प्रस्तुतियों के बाद ही वे लंदन चले गए और पूरे यूरोप के रंगमंच का गहरा अध्ययन करके लौटे थे। इस तरह ने लावस्की और खासतौर से ब्रेस्ट के रंगमंच को पूरी तरह समझा था। लंदन प्रवास के दौरान ब्रेस्ट के नाट्य सिद्धांतों से उनका गहरा परिचय हो चुका था और यूरोप भ्रमण के दौरान उन्होंने बर्लिनर एंसाम्बिल में ब्रेस्ट द्वारा निर्देशित अनेक नाटकों को देखा और उनका सूक्ष्म विवेचन किया था। यहाँ ब्रेस्ट और उनके नाट्य सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित हो चुके थे, लेकिन लंदन और यूरोप भ्रमण के बाद उन्होंने ब्रेस्ट का अंधानुकरण करने की बजाय एक भारतीय मुहावरे की सार्थक तलाश करना ज़्यादा ठीक समझा। शेक्सपियर, गोल्डोनी, मैलियर जैसे क्लासिकल नाटककारों को प्रख्यात नाटकों को रूपांतर किए। वे नई प्रस्तुतिकरण शैली की खोज में जुटे थे और अनेक स्तरों पर प्रयोग कर रहे थे। सन 1998 उन्होंने शुद्रक के नाटक मृच्छकटिक के समानांतर को मिट्टी की गाड़ी के नाम से प्रस्तुत किया, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कलाकारों के शहरी कलाकारों के साथ मंच पर प्रस्तुत किया गया था। अपने इस प्रयोग को उन्होंने नई नौटंकी का नाम दिया था, जिसकी प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी। उस समय उनमें जबरदस्त आत्मविश्वास था। भारतीय लोक नाट्यों की अदम्य शक्ति और ऊर्जा को लेकर वे मन ही मन बहुत उल्लसित थे, लेकिन एक विशेष मानसिकता वाला वर्ग उनके काम को संभव बनाने के लिए जैसे मोर्चा बंद था। सन 1961 में भारतीय नाट्य संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नाट्य परिचर्चा में हबीब तनवीर तथा उनके समान धर्मियों को भारतीय नाट्य परंपरा के समर्थन में दलील देने का फतवा दिया गया था। लगता है इस परिचर्चा में कुछ घुसपैठिए भी आ गए जिनका समकालीन भारतीय रंगमंच से कोई संबंध नहीं। अवमानना और अस्वीकृति के इस वातावरण में ने ही हबीब तनवीर के स्वरों को बेहद आक्रामक बना दिया है। एक तरफ प्रशंसा और मान्यता और दूसरी तरफ उन पर हल्की छीटाकशी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद अंग्रेजी के नाट्य पत्रिका इनैक्ट ने उनका एक लंबा इंटरव्यू प्रकाशित किया। इंटरव्यू पत्रिका के संपादक स्वर्गीय राजेंद्र पाल ने लिया था। इस इंटरव्यू की परिचयात्मक टिप्पणी के रूप में श्री पाल ने लिखा, हबीब तनवीर भारतीय रंगमंच कमोबेश एक विवादास्पद व्यक्ति है। वे सनकी भी हैं और तुनक मिजाज भी। उनके काम करने के तरीकों को लेकर और उसकी अंतिम परिणति के बारे में अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। हबीब तनवीर की आक्रामक भंगिमा उनके रंगकर्म अनेक अवसरों पर नजर आती है। ब्रेस्ट की तरह हबीब ने बिरंग यात्रा के आरंभिक दौर में संसार के श्रेष्ठतम नाटकों को प्रस्तुत किया। दोनों ने प्रचलित पद्धतियों और मान्यताओं को अलग हटकर अपना नया रास्ता बनाने की कोशिश की। यहाँ भी दोनों की चुनौतियाँ अलग अलग किस्म की थी। ब्रेस्ट के सम्मुख एक भरा पूरा पाश्चात्य रंग संसार था, जिसमें निरंतरता थी जो जीवंत था और पूरी तरह स्थापित। इसीलिए समीक्षकों से लेकर दर्शकों तक के मिजाज के बारे में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते थे और वे मान्य या स्वीकृत भी हो सकते थे। इसलिए इस नए रास्ते के प्रतिचिन्हों को देखकर उनका आकलन करना भी कठिन नहीं था। लेकिन हबीब की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी थी। उस समय का स्थापित भारतीय नाट्य मुहावरा पूरी तरह पाश्चात्य तकनीक और पद्धति पर आश्रित था, जैसे हबीब सीधे से नकारते थे, लेकिन उस समय स्थापित और अन्य मुहावरों को नकारने के बाद उनके पास विकल्प के रूप में निश्चित और सर्वमान्य कोई स्वरूप नहीं था। संस्कृत नाटकों को मंच पर प्रस्तुत करने का शास्त्र लगभग 1000 वर्ष पुराना होकर अपनी अस्मिता खो चुका था और हमारे देश के लोग रंगमंच का आधुनिक कहे जाने वाले रंगमंच से कोई संबंध नहीं था। साथ ही लोक नाट्य के मूल्यांकन के संबंध में भी कोई निश्चित प्रणाली, पद्धति या रीति नीति नहीं थी। पारंपरिक रंगमंच विशेष रूप से हिंदी भाषी प्रदेशों में गतिशील तो था, लेकिन उसकी कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं थी। अपनी जमीन की गंध और कलेवर पर आधारित यह नाटक परंपरा समय के साथ साथ अपने को बदलती भी रही है। इसके रूप और प्रभाव भी अलग अलग हैं। यदि स्थूल रूप से देखें तो हिमाचल के करियाला और केरल के कथकली में बहुत अंतर नजर आता है। ऐसी परिस्थितियों में संस्कृत नाटक या कहिए विशुद्ध भारतीय नाटक कैसे वंचित किया जाए, यह चुनौती का विषय था। हबीब तनवीर इस चुनौती का जवाब देने के लिए गहरे गुप्त अंधेरे में रोशनी की तलाश में देश की एक कोने से दूसरे कोने तक भटक रहे थे। ब्रेस्ट और हबीब के अंतरंग संबंधों की शुरुआत इसी बिंदु से होती है। तत्कालीन भारतीय रंगमंच के स्थापित पाश्चात्य अवधारणाओं को पूरी तरह नकार देने के बाद हबीब का अंतर्मन ब्रेस्ट से प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्रेस्ट जाने या अनजाने हबीब की आंतरिक भावनाओं के अत्यंत निकट थे। खासतौर पर इंग्लैंड और यूरोप की यात्राओं के दौरान उन्होंने ब्रेस्ट को अपने नजरिए से सबसे ज्यादा नजदीक पाया। यहाँ लौटने पर उन्होंने ब्रेस्ट के लिखे नाटकों का सहारा भी लिया और सन 1962 में गुड वुमन ऑफ सुजुआन का निर्देशन किया था। यह नाटक अंग्रेजी में और ब्रेस्टियन शैली में ही मंचित किया गया था। इस नाटक की भरपूर प्रशंसा हुई थी क्योंकि शायद श्रेष्ठ के नाटकों और उनके सिद्धांतों से भारतीय दर्शकों को यह पहला साक्षात्कार था। इस नाटक की प्रस्तुति के बाद हबीब ने कालीख में ब्रिस्ट के संबंध में अपनी भावना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। ब्रिस्ट फॉर अ वन प्रोड्यूसर शीर्षक इस आलेख में वे कहते हैं, हमें अपनी जड़ों तक गहरे जाना होगा और अपने रंगमंच की निजी शैली विकसित करनी होगी जो हमारी विशेष समस्याओं को सही तरीके से प्रतिबिंबित कर सके। इसमें भी ब्रिस्ट एक महान शिक्षक हैं। प्रमुखतः ब्रिस्ट आपको अपनी अस्मिता बनाए रखना सिखाते हैं। इसीलिए विडंबना ही है कि अगर भारतीय नाटककार एक वास्तविक देशज रंगमंच विकसित करते हैं तो वह साथ ही साथ सचमुच ब्रिस्टियन थिएटर ही भी होगा। दूसरे शब्दों में यह ऐसा रंगमंच होगा जो न केवल भारत की शास्त्रीय और लोक परंपराओं को आत्मसात करने वाला होगा, जिसके मंचन में संगीत और नृत्य पूरी तरह समाहित होंगे, बल्कि वह उसके साथ साथ सार्वदेशिक भी होगा। और शायद ब्रिस्ट से ही प्रेरणा प्राप्त करके हबीब तनवीर अपने अस्मिता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं, जिसे उन्होंने टू बी योर सेल्फ कहा है। स्पष्ट है कि यह योर सेल्फ नकल करने की इजाज़त नहीं देता और इसीलिए हबीब तनवीर का रास्ता मानवता की मांग करता है। साथ ही साथ ये दिलचस्प बात है कि हबीब तनवीर का यह रास्ता ब्रिस्ट के सिद्धांतों या विचारों का खंडन करता ही नहीं करता, बल्कि अनेक स्थलों पर समान विचारों वाला लगता है। देखना यह भी है कि इस रास्ते में कौन कौन से मोड़ पर हबीब तनवीर ब्रिस्ट से एकदम अलग हो जाते हैं, जहाँ उनकी अन्वेषणा मौलिक शुद्ध विशुद्ध भारतीय और ब्रिस्ट के रंगकर्म से एकदम जुदा है। सच तो यह है कि यही वह बिंदु है जहाँ हबीब तनवीर की रंगमंचीय निजता की पहचान हो सकती है। ब्रिस्ट नए नाट्य सूत्रों अवधारणाओं और नाट्य सिद्धांतों की रचना करते हैं और संसार भर के रंग चिंतक ब्रिस्ट के रंगकर्म को उनके सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हबीब तनवीर अपने नाटकों के लिए कोई नए सिद्धांत नहीं करते, नहीं रंग चिंतकों के लिए अपने नाटकों की पद्धति को व्याख्यायित ही करते हैं। ब्रिस्ट आखिर तक अपने सिद्धांतों को पूरी तरह से प्रतिपादित न होने पाने के कारण असंतुष्ट नजर आते हैं। उनके सिद्धांत उनके प्रदर्शनों से कहीं बड़े सिद्ध होते हैं। दूसरी ओर हबीब तनवीर किन्हीं निश्चित नाट्य सूत्रों की उद्घोषणा नहीं करते, अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को एक ऐसा आस्वाद से परिचित करवाते हैं जो दर्शकों के लिए अपरिचित नहीं, लेकिन फिर भी उसका आस्वाद उन्हें एकदम नया लगता है। हबीब तनवीर अत्यंत सहजता से अपने दर्शकों को 1000 वर्षों के अंतराल के उस पुल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जो विशुद्ध भारतीय है, पारंपरिक है और हमारा अपना है। अपनी युवावस्था में ही 20 और 30 के दशक में जब जर्मनी में जबरदस्त उथल पुथल मच रही थी, ब्रिस्ट को स्वदेश छोड़ना पड़ा। इसी दौरान वे मार्क्सवादी विचारों के कट्टर समर्थक बन गए थे। तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का हनन और पतन से क्षुब्ध वे एक नई मानसिकता के आगोश में बच चुके थे। कवि और अभिनेता होने के कारण उनके मन में उस समय के जर्मन थिएटर के प्रति असंतोष था। उस समय का जर्मन थिएटर अतिशय भावुकता से ओतप्रोत था। दर्शकों के मन में यथार्थवादी अभिनय, कथानक और प्रस्तुतिकरण शैली के द्वारा उत्पन्न सम्मोहक प्रभाव रंगमंच के अधिक प्रयोजन को नष्ट कर रहा था। युवा ब्रिस्ट के मन में उस समय के कथानकों या नाटक लेखों से कहीं अधिक असंतोष उसकी प्रस्तुतिकरण शैली को लेकर था। उन नाटकों के मंचन से दर्शकों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव से ब्रिस्ट पूरी तरह असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि यथार्थवादी रंगमंच अपने सम्मोहक प्रभाव से दर्शकों को भावुकता के शिकंजे में कस लेता है और उसे नाटक में मौलिक स्थितियों, चरित्रों और द्वंद के को विवेक के आधार पर विश्लेषित करने का अवकाश नहीं देता। ब्रिस्ट इस अभिनय पद्धति या रंगमंच के इस प्रयोजन पूरी तरह असहमत थे। उनकी राय थी कि अभिनेता को नाटक का चरित्र इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि अभिनेता और चरित्र एकमय हो जाए। अभिनेता और चरित्र के बीच एक कलात्मक दूरी बनाए रखना जरूरी है, जिससे दर्शकों को रंगमंच पर घटित स्थितियों के प्रति वास्तविकता के भ्रम का बोध न हो। इसलिए उनके मन में डिस्टिंक्ट एक्टिंग का विचार आया और उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों में इसका जिक्र किया। उस समय के आलोचकों ने उनके विचारों की तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। ब्रिस्ट के अभिनय के अलगाव डिस्टेंट एक्टिंग के सिद्धांत की सार्थकता का महत्व इसलिए है कि जर्मन रंगमंच में उस समय अत्यधिक भावुकता से भरा हुआ घोर परंपरावादी अभिनय प्रचलित था। मैंने उनके नाट्य सिद्धांतों को पढ़ा है और प्रयोग भी देखे हैं। इन दोनों में परस्पर कोई तालमेल नहीं है। सामान्यतः रचना पहले होनी चाहिए और सिद्धांतों का गणना उसके बाद। इस समीक्षा पर टिप्पणी करते हुए मार्गरेट एडरशा ने अपनी पुस्तक परफॉर्मिंग ब्रिस्ट में लिखा, अतिभावुकतावादी जर्मन अभिनय के संबंध में यह टिप्पणी पूरी तरह युक्तिपूर्ण है। निश्चय था ब्रिस्ट उस समय प्रचलित जर्मन अभिनय पद्धति को देख करती की प्रक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर रचनात्मक प्रयोग नहीं किए, लेकिन अपने रंगमंच को ज़्यादा पीछे तरीके से व्याख्यात करने के लिए उन सूत्रों का सारा लिया जो पहले से उनके मन में जगह बनाए हुए थे। इस तरह की आलोचना के बावजूद वरिष्ठ अपने प्रयोजन पूरी तरह प्रतिबद्ध थे और अनेकानेक नाट्य युक्तियों के द्वारा अपने अलगाव को सिद्धांत को प्रतिपादित करने की चेष्टा कर रहे थे। तभी वरिष्ठ के रंग जीवन के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। सन 1935 में माइलेन फेंग की सोवियत संघ की यात्रा के दौरान वरिष्ठ ने हिटलर के दमन और अत्याचार से बचने के लिए मॉस्को में राजनीतिक शरण ले रखी थी। तभी उन्हें माइलेन फेंग का अभिनय देखने का अवसर मिला, जो माइलेन फेंग की कला से इतने प्रभावित हुए कि 1936 में उन्होंने एक आलेख प्रस्तुत किया, फर प्रेम डंग इफेक्ट ऑफ द चाइनीज शीचे बुगने, चीनी बैल का अलगाव प्रभाव। उन्होंने भावभीनी शब्दों में माइलेन फेंग और चीनी रंगमंच पिकिंग ऑपेरा का जिक्र किया था तथा अत्यंत उत्साहपूर्वक कहा था कि जिस चीज की वो वर्षों तक विफल तलाश कर रहे थे वह अंततः उन्हें माइलेन फेंग के उत्कृष्ट अभिनय में मिल गई है। यह नाटक था द फिशर मैंस रिवेंज। आखिर इस प्रस्तुति में ऐसा क्या था जिसने वर्तमान बेस्ट के लिए एक नए नाट्य सिद्धांत की बुनियाद तैयार कर दी? इस प्रस्तुति और उसके अभिनय पद्धति के बारे में कुछ शब्द। एक युवती जो मछुआरे की बेटी है, एक काल्पनिक नाव को खेने की मुद्रा में खड़ी है। नाव को चलाने के अभिनय के लिए वह एक पतवार थामे हुए है जो मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंचती है और उस पतवार के सहारे वह नाव चलाने का अभिनय करती है। नदी की धारा जैसे तेज होती है वैसे वैसे युवती अपना संतुलन बनाए के कठिनाई का अनुभव करती है। कुछ देर में नाव एक सकरी झाड़ी में पहुंचती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। नाव चलाने का यह भाव सिनेमा अभिनेता अपनी अभिनय पद्धति के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित करता है। किसी यथार्थवादी रंगमंच की सहायता के लिए बिना माइलेन फेंग केवल अपने शारीरिक अभिनय मुद्राओं तथा भंगिमाओं के जरिए इस प्रसंग के सभी भावों को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह अभिनेता का कमाल है कि वह अपने श्रेष्ठ अभिनय से दृश्य को अविस्मरणीय बना देता है। माइलेन फेंग की इस अभिनय क्षमता से ब्रेस्ट के मन में बुद्धि पर इतना गहरा असर डाला होगा इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। खासतौर से उस वक्त जबकि पूरे विश्व में स्थानीय लावस्की के नाट्य सूत्र जिसमें चरित्र में प्रवेश करने का विधान, भावनात्मक स्मृति, चौथी दीवार की परिकल्पना आदि प्रमुख है, निर्देशकों, अभिनेताओं और नाट्य समीक्षकों के दिमाग में सिर चढ़े जादू की तरह असर दिखा रहे थे। दूसरी ओर हबीब तनवीर इप्टा के दौरान ये उनके मन में भी तत्कालीन व्यवस्था, सामाजिक विषमता और भारतीय संस्कृति के अवमूल्यन के कारण एक असंतोष जन्म ले चुका था। रंगमंच की दृष्टि से उनका झुकाव भारतीय परंपरा और खासतौर से लोक नाट्यों की ओर हो चुका था। आगरा बाजार की प्रस्तुति के दौरान छत्तीसगढ़ के कलाकारों की ऊर्जा और अभिनय की सहजता ने उन्हें मुग्ध कर लिया था। संकेत नृत्य और अभिनय की एक सूत्रता से दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को आजमा चुके थे, लेकिन फिर भी अभिनय की नई प्रणाली और इस पद्धति के सूत्र उनकी गिरफ्त में नहीं आ पाए थे। शहरों के प्रशिक्षित और श्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के कलाकारों को लेकर वे अनेक प्रस्तुतियां कर चुके थे जिसमें उसे अधिकांश में उन्होंने सफलता नहीं मिली थी। अपनी इस विफलता से उन्होंने सीख लिया था कि शहरी अभिनेताओं की अभिनय शैली और लोक कलाकारों की अभिनय शैली में एक बड़ी खाई है जिसे पाटना लगभग असंभव है। इसी दौरान उन्होंने उड़ीसा के प्रहलाद नाटक, हरियाणा के स्वांग, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, राजस्थान के ख्याल आदि के अनेक मशहूर दलों और अनेक कलाकारों के साथ काम भी किया। उसके साथ कई नए नाटक भी प्रस्तुत किए। इसका प्रयोजन था कि इस तरीके से जो भारत के विभिन्न लोक नाट्य परंपराओं से सीधे साक्षात्कार कर सके, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद कहीं कोई जमीन टूटती नजर नहीं आई। सन 1973 में उन्होंने रायपुर में नाचा के अनेक कलाकारों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें वहां के 3 लोक कथाओं को एक साथ गूंथकर नया नाटक तैयार किया गया था। गाँव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद। गाँव का नाम ससुराल के निर्देशक के दौरान हबीब तनवीर ने इन कलाकारों से कुछ बातें सीखी। इन्हीं कलाकारों के जरिए हबीब तनवीर को अपनी रंगमंची मुहावरों के वे सूत्र मिले जिनकी उन्होंने वर्षों से तलाश थी। पूर्वाभ्यास के दौरान हबीब तनवीर निर्देशकों निर्देशन की स्थापित और मान्य तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। संवादों को मोटे तौर पर याद करा देने के बाद या कहिए कि कलाकारों को चरित्र की कुछ खास बातें बता देने के बाद सबको कहानी के सारे प्रसंग अच्छी तरह समझा दिए गए। उसके बाद उन्होंने ब्लॉकिंग शुरू की जो कलाकारों को बताने लगे कि अमुक संवाद बोलते समय उन्हें 2 कदम आगे आना है या अगले संवाद को बोलने के लिए खास अंदाज में उड़ना है, एक खास स्थिति में बाएं के बजाय दाएं हाथ उठाना है, अगला संवाद 2 कदम पीछे जाकर बोलना है, दूसरे चरित्र में किस तरह मुखातिब होकर अपना अगला संवाद बोलना है आदि आदि। परिणाम बड़ा विचित्र हुआ। हबीब साहब के निर्देशों का पालन करने की ईमानदार कोशिश में कलाकारों के संवादों की सहजता नष्ट हो गई। हर एक कदम नाप तौल पर रखने की कोशिश में अपने सयास होने लगा। असहजता स्फूर्ति और ऊर्जा के स्थान पर औपचारिकता सपाटपन और यंत्रीकृत अभिनय की झलक आने लगी। हबीब साहब ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो कलाकार भी भ्रम की स्थिति में आ गए। कलाकार यह समझ पाने में विफल थे कि हबीब साहब के निर्देशकों का पालन करते हुए वे अपने अभिनय की सहजता कैसे ला सकते हैं। अनेकानेक प्रयत्न के बाद आखिर हबीब तनवीर हार गए और उन्होंने कलाकारों को अपने तरीके से संवाद बोलने की छूट दे दी। बस फिर क्या था, उनके अभिनय में जो जीवंतता नजर आई वह हबीब साहब के लिए आह्लादकारी थी। कलाकार पूरी शक्ति सामर्थ्य सहजता के साथ संवाद बोलने लगे। बीच में मनगढ़ंत संवाद बोलने की मेरी छूट ने अभिनय को और अधिक गतिशील आकर्षक स्वभाव को सहज बना दिया। इस तरह के अभिनय को देखकर दर्शकों को जिस ताजगी का अनुभव हुआ उनके लिए नितांत नहीं थी। हबीब तनवीर की कुछ इसी तरह की अभिनय पद्धति खासतौर से दर्शकों के मन पर पड़ने वाले इसी प्रभाव को वर्षों से तलाश थी। गांव का नाम ससुराल की प्रस्तुति के दौरान वह तलाश पूरी हुई। ब्रिष्ट और हबीब को अपने अपने तरीकों से आखिर तक चीज तो मिल गई जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहे थे और अनेकानेक प्रयोगों के बावजूद वह उसे प्राप्त करने में अब तक असमर्थ रहे थे। लेकिन इन दोनों निर्देशकों की जोड़ी में तत्व जो गिरा उसमें भी जमीन आसमान का अंतर था। ब्रिष्ट ने माई लैंग फेंग के अभिनय को देखकर सिद्धांत पहले कड़ा और बाद में अपने नाटक दल के साथ उसे व्यावहारिक रूप देने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके अभिनेता कभी भी माई लैंग फेंग जैसे अभिनय क्षमता और उत्कृष्टता का परिचय नहीं दे पाए। सम्मोहन के प्रभाव से बचने के लिए अंततः उन्होंने अनेक नाट्य युक्तियों की शरण ली। यह नाटक लिखे, पुराने क्लासिक नाटककारों को रूपांतर किए, सैद्धांतिक दृष्टि से बहुचर्चित भी और प्रशंसित भी, लेकिन उनके अभिनेताओं के अभिनय में उनके सिद्धांतों का प्रतिफलन नहीं था। थिएटर बट एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बर्लिनर एनसेम्बी की अनेक प्रस्तुतियों का विवरण और विश्लेषण एकत्रित है। इसका संपादन स्वयं ब्रिष्ट और उनके दो अन्य सहयोगियों ने किया। इस पुस्तक में सन 1952 से 1955 तक यानी ब्रिष्ट की मृत्यु से एक वर्ष पहले तक की प्रस्तुतियों का जिक्र है। पूरी पुस्तक में ब्रिष्ट की प्रस्तुतियों के व्यावहारिक पक्ष को विशेष रूप से करा गया है। इस पुस्तक में नए विचारों का आकलन नहीं है बल्कि पुराने सूत्रों और विचारों के क्रियान्वित का लेखा जोखा है। इस पुस्तक में एक अध्याय में इसी पुष्प विचार किया गया और यह सचमुच बर्लिनर एनसेम्बी के रंगमंडल के सदस्यों के लिए अभिनय प्रशिक्षण की कोई निश्चित प्रणाली या पद्धति है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है, इसका एक अंश। संभवतः इसका कारण यह है कि न तो ब्रिष्ट स्वयं न बर्लिनर एनसेम्बी का कोई अन्य निर्देशक पूर्वाभ्यास के दौरान ब्रिष्ट के सिद्धांत पक्ष अर्थात ए शॉर्ट आर्गनम फॉर द थिएटर का कोई जिक्र करता है। कुछ नाटकों में जरूर उन व्यावहारिक निर्देशकों का हवाला दिया जाता है जो पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन यह ब्रिष्ट का विचार है कि वर्तमान समय में रंगमंच उस स्थिति में नहीं है कि उन सभी सिद्धांतों का पूरी तरह पालन किया जा सके। ब्रिष्ट के सिद्धांतों और व्यावहारिकता के बीच की इस दूरी ने अनेक अभिनेताओं के मन में भ्रांति पैदा कर दी। 5वें दशक के मध्य में ब्रिष्ट पेरिस लंदन न्यूयॉर्क आदि अनेक विश्व नाट्य केंद्रों में नाट्य चिंतक और निर्देशक के रूप में आमंत्रित किए जाने लगे थे। ऐसी स्थिति में उनके अभिनेता पात्रों के माध्यम से उनसे संपर्क रखते थे। उनमें एक अभिनेता को ब्रिष्ट ने अपने सिद्धांतों और व्यवहारिक संदर्भता के संबंध में एक पत्र लिखा जो अनेक भ्रांतियों से भरा था। उस पत्र के उत्तर में ब्रिष्ट ने लिखा, मैं अनुभव करने के लिए बाध्यसा हो रहा हूँ कि रंगमंच के संबंध में मेरी अनेक टिप्पणियों को गलत तरीके से समझा जा रहा है। मैं इस निष्कर्ष पर उन अनेक पत्रों और लेखों को पढ़ने के बाद पहुंचा हूं कि सैद्धांतिक तौर पर मुझसे सहमत है। तब सोचता हूं कि किसी गणित शास्त्री को कैसा लगेगा अगर उसे अपनी प्रशंसा में पढ़ने को मिले। प्रिय महोदय, मैं आपके विचार पूरी तरह सहमत हूँ, 2 और 2 5 होते हैं। ब्रिष्ट के रंगमंच सिद्धांतों को एक निश्चित प्रशिक्षण शैली एक न होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि गार्लिनर एनसेम्बी में प्रवेश करने के लिए केवल पश्चिम जर्मन के ही नहीं बल्कि शेष यूरोपीय इंग्लैंड और अमेरिका से भी मजे हुए अभिनेता बड़ी संख्या में आते थे। जाहिर है कि उन सभी का प्रारंभिक अभिनय प्रशिक्षण यथार्थवादी शैली के आधार पर ही होता था, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिष्ट की अभिनय संबंधी मान्यताओं को पूरी तरह स्वीकार करने के बावजूद बर्लिनर एनसेम्बी के अभिनेताओं के अभिनय में यथार्थवादी अभिनय प्रणाली का प्रभाव झलकता रहा होगा। पीटर ब्रुक ने बर्तोल्ट ब्रिष्ट द्वारा निर्देशित बर्लिनर एनसेम्बी की प्रस्तुति द मदर करेज को देखकर कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। अपनी पुस्तक द शिफ्टिंग पॉइंट में वह अपने इस अनुभव का जिक्र इस प्रकार करते हैं, 1950 में जब मैं शेक्सपियर मेमोरियल थिएटर के लिए स्वयं द्वारा निर्देशित नाटक मेजर फॉर मेजर की प्रस्तुति के साथ भ्रमण कर रहा था, तब बर्लिन में ब्रिष्ट से मेरी पहली मुलाकात हुई। हमने रंगमंच की समस्याओं के बारे में परस्पर बातचीत की और मैंने पाया कि सचमुच वास्तविकता के भ्रम और वास्तविकता स्वेलगांव की उनकी मान्यताओं से सहमत नहीं हूँ। बर्लिनर एंसेम्बल के लिए यह मदर करेज की उनकी प्रस्तुति को देखते हुए मैंने पाया कि रमंच पर वास्तविकता के भ्रम को तोड़ने के लिए वे जितने अधिक प्रयास करते हैं, मैं उसे तय दिल से उस भ्रम के घेरे में बंद होता जा रहा हूँ। शायद यही वजह सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि वेश अपनी प्रस्तुतियों में यथार्थवादी रंगमंच की सम्मोहक शक्ति पूरी तरह ध्वस्त करके ए इफेक्ट पैदा करना के लिए कई तरह के नाटक पर युक्तियों का सहारा लेते हैं। लेकिन यह कहना प्रासंगिक क्या लगता है कि माइलेन फेंग के जिस अभिनय को देखकर बल्दुल बेस्ट ने इफेक्ट किया धारणा की उसी माइलेन फेंग को अपने अभिनय में ए इफेक्ट के लिए किसी और नाटक युक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। सम्मोहन की संभावना से एकदम दूर भी अपने अभिनय से दर्शकों को कल्पनाशीलता के जगाए रखने पूरी तरह समर्थ है। वह अपने अभिनय की शैली पर अभिन्न अंग है और उस अभिनय पद्धति के रेशे रेशे में रचा बसा है। यह कहना शायद गलत न हो कि वरिष्ट अपने जीवन के अंतिम दिनों तक अपनी नाटक अवधारणाओं के अनुसार अभिनय का वह प्रभाव प्राप्त नहीं कर सके जिन्होंने उन्हें जीवन भर तलाश रही। दूसरी ओर हबीब तनवीर ने भारतीय रंग परंपराओं को बार बार खंगाल कर देखने के बाद विदेशों के समृद्ध रंगमंच से प्राप्त किए गए हथियार छोड़ दिया और लोक कलाकारों के अभिनय शक्ति ऊर्जा और सहजता के लिए बनाए रखने के लिए पूरी तरह उनके सम्मुख समर्पण कर दिया। सचमुच छत्तीसगढ़ के ठाकुर राम, मदन लाल, फिदाबाई, बुलवाराम आदि कलाकारों ने परोक्ष रूप से हबीब तनवीर के भारतीय पारंपरिक अभिनय शैली के क्षीर सागर से परिचित कराया है। हबीब तनवीर ने अपने कौशल, दृष्टि संपन्नता और रंग विवेक से उसे मथा है। उनकी मथनी से जो मक्खन निकला है उसका स्वाद विश्व रंगमंच के लिए अद्भुत है।